हम कलयुग के न्यायाधीश श्री शनि देव की कुछ महिमाओं का वर्णन करेंगे। शनि देव को कलयुग का न्यायाधीश माना जाता है भक्तों। जिन पर ये कृपा करते हैं उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता भक्तों। सूर्य पुत्र भगवान शनि देव जिन भक्तों पर अपनी दया दृष्टि की छाया रखते हैं वो भक्त हर कार्य को बड़ी आसानी से संभव कर पाते हैं। किंतु शनि देव की ढैया जिस पर लग जाती है वो राजा भी कंगाल हो जाते हैं। अतः शनि महाराज को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए भक्तों। सच्चे मन से जो भक्त उनका ध्यान लगाता है उस भक्त पर वो सदैव सदैव मेहरबान रहते हैं भक्तों। तो आइए भक्तों सुनते हैं शनि महाराज की महिमा का वर्णन इस पावन कथा के माध्यम से। मेरे साथ मिलकर बोलिए शनि देव महाराज की। बाद ही कहीं अन्न जल ग्रहण करता था और दूसरों के हित के लिए सदैव सदैव सोचता था भक्तों। ग्रामवासी उस ब्राह्मण का बहुत ही आदर सम्मान करते थे। एक दिन की बात है सुबह सुबह जब वो गंगा स्नान करने जा रहा था तो रास्ते में उन्हें शनि देव मिल जाते हैं। ब्राह्मण ने शनि देव को प्रणाम किया और ब्राह्मण पूछने लगा कि हे शनि देव आज सुबह सुबह आप किधर जा रहे हैं। तो शनि देव ने उस ब्राह्मण से क्या कहा भक्तों। ब्राह्मण ने उन्हें शीश झुकाया और पूछना इतना चाहा शनि देव आज प्रातः प्रातः राजन के बदले में ढैया मेरे ऊपर लगा दीजिए। शनि देव कहने लगे कितने वर्षों के लिए लगाऊं। तो ब्राह्मण बोला हे महाराज वर्षों तक तो मुझसे ना सही जाएगी। ब्राह्मण का था इतना कहना वर्षों तक तो होगी सहनना इतनी सी कृपा बरसा दो
Bye.
जब ब्राह्मण गंगा स्नान करके सूर्य को अर्घ देकर बाहर निकला तो गंगा के किनारे ध्यान लगाकर बैठ गया। उसी समय देखा कि दो मतीरे पानी में तैरते हुए आ रहे हैं। ब्राह्मण ने सोचा, पूजा पाठ के बाद आज इन्हीं मतीरों को मैं खाऊंगा। सवा पहर तक, जब तक शनि की ढैया है, मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा। और ब्राह्मण ने वो मतीरे निकालकर अपने घुटनों के नीचे रख लिए और ईश्वर के ध्यान में बैठ गया। भक्तों, इधर से एक राहगीर गुजर रहा था। उसने देखा ब्राह्मण अपने दोनों घुटनों के नीचे नरमुंड दबाए हुए हैं। पास आकर देखा तो वो दोनों राजा के पुत्रों के शीश थे। भक्तों, नगर में जाकर उसने सबको बता दिया कि एक ब्राह्मण ने राजा के दोनों बेटों के शीश काट दिए हैं और उसे घुटनों के नीचे दबाकर बैठा हुआ है। ज्यों ही राजा तक ये खबर पहुंची, राजा बिलाप करता हुआ आया भक्तों, और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि ब्राह्मण को तुरंत पकड़ कर लाओ और सूली पर चढ़ा दो। बातें नगर में फैल गई है, राजकुमारों की हत्या हुई है। राजा मंत्री को बुलवा कर दोनों पे मेरे राजकुमार है। ब्राह्मण ने दिया शीश उतार है, सुनकर मुझको हुआ कष्ट है।
ब्राह्मण तो बड़ा दुष्ट है,
शीघ्र ही उसे पकड़ कर के नीचे राजकुमारों के शीश दबा रखे थे। ब्राह्मण को सैनिकों ने उठाया। जो ही ब्राह्मण ने आंखें खोली, देखा कि वास्तव में मतीरों की जगह राजकुमारों के शीश हैं। भक्तों, अब ब्राह्मण को समझ में आ गया, शनि देव की ढैया ने अपना असर दिखा दिया। सैनिक उसे पकड़ कर ले गए। राजा ने कहा, इस ब्राह्मण ने मेरे निर्दोष राजकुमारों की हत्या की है, इसे तुरंत ही सूली चढ़ा दो। ब्राह्मण को चौराहे पर लाकर जैसे ही सूली लटकाने लगे, सूली टूट गई भक्तों। फिर राजा ने तांबे की सूली बनवाई और ब्राह्मण को सूली चढ़ाने लगे तो वो भी टूट कर गिर गई भक्तों। इसी तरह राजा ने चांदी की सूली बनवाई, वो भी टूट कर गिर गई भक्तों। तो सोने की सूली बनवाने का आदेश दिया राजा ने। तब तक सवा पहर बीत चुका था भक्तों।
शनि देव की धैया जो थी सवा पहर के लिए तो वो थी, सूली ब्राह्मण चढ़ ना पाए।
चाहा किंतु जिस धातु की सूली पर भी चढ़ाते वो टूट जाती भक्तों। लोहे की टूटी तो तांबे की बनवाई, तांबे की टूटी तो चांदी की बनवाई, चांदी की टूटी तो सोने की सूली बनवा कर लाए भक्तों। इसी क्रम में सवा प्रहर बीत गया भक्तों। तभी दोनों राजकुमार खेलते खेलते राजा के पास आ जाते हैं। रानी उनको देखकर बड़ी ही हर्षित हुई। फिर रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, अभी तक तो सैनिक ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा चुके होंगे, हो सकता है ना भी चढ़ाया हो। आप जल्दी से जाइए और उन्हें रोकिए, वरना हमें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। राजा तुरंत ही वहाँ आए और कहने लगे, सैनिकों, ये ब्राह्मण निर्दोष है, इसको छोड़ दो। फिर राजा ने ब्राह्मण से विनम्र विनती करके क्षमा याचना की तो ब्राह्मण देव ने कहा, राजन, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, सवा प्रहर के लिए मुझ पर शनि की धैया थी जो मैंने जानबूझकर लगवाई थी। राजा पूछने लगे, आपने जानबूझकर क्यों लगवाई? तब ब्राह्मण ने सारा वृतांत राजा को बता दिया। भक्तों, राजा ने सोचा ये ब्राह्मण कितना परोपकारी है और मैंने इसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया था। राजा को बड़ा ही पश्चाताप हुआ। राजा फिर ब्राह्मण से क्षमा प्रार्थना करके पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, यदि शनि की धैया लग जाए तो उसे किस प्रकार से उतारा जा सकता है? तब ब्राह्मण राजा से कहने लगा, जो शनि की धैया लग जाए सोना चांदी उसे चढ़ाए तांबा या लोहा कर अर्पण
शनि देव होते पसंद।
यदि ये संभव ना हो पाए काले तिल और तेल चढ़ाए काले अमृत है जो भी चढ़ाते
भैया उन पर नहीं लगाते
या फिर हाथ पास हो भक्त हो गए और नित्य नियम से शनि महाराज की पूजा करने लगे। ब्राह्मण को उन्होंने आदर सहित विदा किया। भक्तों, ब्राह्मण ने शनि देव की धैया अपने ऊपर ले ली थी, उसका भी धन्यवाद किया। भक्तों, शनि देव की वक्र दृष्टि से तो देवता भी नहीं बच पाते, फिर इंसान तो क्या है। इसी तरह की एक और कहानी है भक्तों। जब शनि देव ने सोचा कि मैं भोलेनाथ पर अपनी वक्र दृष्टि डालता हूँ, ये सोचकर शनि देव कैलाश पर आ गए। भक्तों, भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोलेनाथ ने उनसे आने का कारण पूछा तो शनि देव क्या कहते हैं भक्तों,
सुन लो हे भोले भंडारी, इतनी सी इच्छा है हमारी, मेरी दृष्टि जो है वह बात है मात्र सवा पहर की, डालूंगा अपनी वक्र दृष्टि, हे भोले तुम इसे संभालो, सुनकर के भोले मुस्काए, मुझ पर ना कुछ असर दिखाई, अपना मन तुम भी बहला लो, भोलेनाथ ने आज्ञा दे दी, डाली शनि ने वक्र दृष्टि, भोलेनाथ को समझ ना आया,
उन्होंने इससे बचना चाहा।
तो शनि देव ने जो ही भोलेनाथ पर वक्र दृष्टि डाली, भोलेनाथ सोचने लगे, मैं शनि देव की वक्र दृष्टि से बच जाऊंगा, और कैलाश छोड़कर वो मृत्यु लोक में आ गए और सवा पहर तक एक हाथी का रूप बनाकर जंगल में विचरते रहे। भोलेनाथ सोच रहे थे, भक्तों, शनि देव की वक्र दृष्टि मुझे पहचान ही नहीं पाएगी, और सवा पहर तक मृत्यु लोक में हाथी बनकर विचरते रहे। जैसे ही सवा पहर पूरा हुआ, भोलेनाथ ने सोचा शनि देव की वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई असर ना हुआ, अब तो सवा पहर बीत चुका है, मैं वापस कैलाश पर चलता हूँ। भोलेनाथ हाथी की योनि छोड़कर कैलाश पर लौट आए। भक्तों, कैलाश पर आकर देखा शनि देव वहीं बैठे हुए हैं और भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भोलेनाथ शनि देव से कहने लगे, भक्तों,
शनि तुम्हारी वक्र दृष्टि मेरा बिगाड़े न पाई कुछ भी, सवा पहर अब बीत गया है,
मुझे देखो कुछ ना भी हुआ है,
सुन कर के शनि लगी मुस्कानी, मानी आप चाहे ना मानी, समझ आपकी नहीं है आया,
दृष्टि ने असर दिखाया,
भोलेनाथ ने गिर ये पूछा
दिखाई दिया, जिसके कारण आपको कैलाश छोड़कर मृत्यु लोक पर जाना पड़ा है और आप सवा पहर तक हाथी की योनि में भी रहे। यही मेरी वक्र दृष्टि का असर था। तब भगवान भोलेनाथ ने माना कि हाँ शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि से तो कोई भी नहीं बच सकता। और भोलेनाथ ने शनिदेव को गले लगा लिया भक्तों। तो इस प्रकार से भक्तों, देवतागण भी शनिदेव की वक्र दृष्टि से नहीं बच पाते हैं। इसीलिए भक्तों का कर्तव्य बनता है कि शनिदेव को हमेशा प्रसन्न रखें और विधि पूर्वक उनकी पूजा करें।
शनिदेव का करना सुमिरन, रखना इनको सदा ही प्रसन्न, रोष कभी न होने देना। जब ये कोपित हो जाते हैं, देव तभी नहीं बच पाते हैं, पड़े तो इनकी वक्र दृष्टि।
करना चाहिए कि शनिदेव हमेशा हम सभी से प्रसन्न रहे और ऐसा कोई कार्य हमसे ना हो कि शनिदेव की वक्र दृष्टि हम पर पड़े। तो आइए भक्तों, सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शनिदेव का ध्यान करते हैं और मेरे साथ बोलते हैं, शनिदेव महाराज की।